أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أما بعد. پیارے دوستو، السلام علیکم. ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر، جس میں ہم احکام اسلامی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں. اور پچھلے پروگرام میں ہم نے حوالے، قرض اور گروی وغیرہ رکھنے کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، اور آخر میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں ضمانت کے سلسلے میں بحث کریں گے، گفتگو کریں گے. ضمانت کی تعریف ہم نے پہلے ہی بیان کی تھی کہ اگر کوئی انسان کسی سے قرض لیتا ہے اور کوئی تیسرا شخص یہ وعدہ کر لیتا ہے، یہ طے کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس شخص کے قرض کو، جو اس نے آپ سے قرض لیا ہے، اس کو میں ادا کروں گا، تو اس کام کو ضمانت کہتے ہیں. یعنی یہ تیسرا انسان ضامن اور ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ اس کے قرض کو ادا کرے جس کے قرض کی ضمانت لی ہے. دوستو، سب سے پہلے ہم ضمانت کے کچھ شرائط آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کے بعد ضمانت کے احکام بیان کریں گے. ضمانت کی پانچ شرطیں ہیں اور چار احکام ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ضامن، یعنی جو انسان یہ ضمانت لے رہا ہے کہ فلاں کے قرض کو میں ادا کروں گا، وہ دوسرے قرض دینے والا، جس انسان نے قرض دیا ہے وہ، اور جس انسان نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس کا قرض میں آپ کو ادا کروں گا، ان دونوں کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ یہ دونوں بالغ ہوں. یعنی اگر یہ دونوں بالغ نہیں ہیں تو پھر ضمانت قبول نہیں ہے. یعنی نابالغ کسی کی قرض ادا کرنے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا ہے. عاقل ہوں، یعنی دیوانے نہ ہوں، مجنون نہ ہوں. اگر کوئی دیوانہ یا مجنون ذمہ داری لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری قبول نہیں ہے. رشید ہوں، یعنی سمجھدار ہوں. اگر کوئی انسان نہ سمجھے اور نہ سمجھے میں ایسے ہی کہہ دیتا ہے کہ میں اس کے قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں ادا کروں گا، تو وہ ذمہ دار نہیں ہے. اور اسی طریقے سے صاحب اختیار ہو، یعنی اس کے پاس اختیار پایا جاتا ہو اپنے مال کو خرچ کرنے کا، اور یہ اختیار ہو کہ وہ اس کے قرض کو ادا کر سکے. دوسری شرط یہ ہے کہ طلبکار، یہ قرض دینے والا، دوسری شرط یہ ہے کہ قرض دینے والا کسی سبب سے، کام کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے، آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے، انکم نہ ہونے کی وجہ سے، حاکم شرع کی طرف سے، جو شریعت کا حاکم ہے، اس کی طرف سے اپنے مال کو خرچ کرنے میں بے اختیار نہ ہو گیا ہو، جسے شرعی اصطلاح میں ممنوع التصرف کہتے ہیں یا منع التصرف کہتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر کوئی انسان کماتا نہیں ہے، اس کے پاس آمدنی نہیں ہے، بال بچے ہیں اور ان کے خرچ کو صحیح سے نہیں چلا پاتا ہے، کچھ پیسہ کہیں سے آتا بھی ہے، کچھ کما کے بھی لاتا ہے، تو اس کو صحیح سے خرچ نہیں کر پاتا، گویا جسے اپنے یہاں کہتے ہیں بےہودہ یا اوباش، غلط طریقے سے خرچ کر دیتا ہے، بچے بھوکے مرتے ہیں اور وہ پیسے کو جو ہے وہ ایسے الٹے سیدھے کاموں میں اڑا دیتا ہے، تو حاکم شرع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو خود اپنے مال کو، یعنی اس کو جو ہے وہ اجازت نہ دے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کر سکے، بلکہ حاکم شرع یا خود یا کسی سمجھدار انسان کو معین کرے کہ اس کے مال کو اس پر، اس کے گھر والوں پر خرچ کرے. تو اگر طلبکار جو ہے، یعنی اگر قرض دینے والا حاکم شرع کی طرف سے اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مال میں خرچ نہیں کر سکتا ہے، تو پھر اگر کوئی اس کے قرض کی ضمانت لے لیتا ہے تو ایسی ضمانت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ انسان ذمہ دار نہیں ہوگا، بلکہ خود اس کے لیے قرض دینا بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حاکم شرع نے اس کو منع کر دیا ہے اپنے مال کو خرچ کرنے سے، لہذا نہ اس کے لیے قرض دینا صحیح ہے और ना ही जो है अगर कोई जिम्मेदार बन जाता है तो उसकी जमानत कबूल है। तीसरी शर्त यह है कि जिस चीज़ का, जिस कर्ज़ का, जिस उधार का इंसान जिम्मेदार बन रहा है वो उधार लिया जा चुका हो, यानी पहले उधार ले चुका हो उसके बाद कोई तीसरा इंसान आकर कहे कि मैं फलां शख्स के कर्ज़ का जिम्मेदार हूँ, जो कर्ज़ उसने आपसे लिया है उस कर्ज़ को मैं अदा करूँगा। ऐसा ना हो कि फलां शख्स जो है जब कभी भी आपसे कर्ज़ लेगा तो मैं उस कर्ज़ को अदा कर दूँगा, ये ज़मानत कबूल नहीं है, और ऐसी सूरत में वो इंसान जो ज़मानत ले रहा है वो कर्ज़ का ज़िम्मेदार नहीं है। चौथी शर्त यह है कि कर्ज़ देने वाला, कर्ज़ लेने वाला और जो चीज़ कर्ज़ दी गई है वो मुअय्यन होनी चाहिए, मुशख्खस होनी चाहिए, यानी जो तीसरा इंसान ज़िम्मेदारी ले रहा है, ज़मानत ले रहा है कि फ़लां शख्स के कर्ज़ को मैं अदा कर दूंगा, उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि कर्ज़ किससे लिया है, ये भी मालूम होना चाहिए कि कर्ज़ किसने लिया है, और ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या कर्ज़ लिया है, क्या चीज़ उधार ली है, पैसे लिए हैं या मिसाल के तौर पर सोना लिया है, जेवर लिया है, ज़मीन ली है, गेहूँ लिया है, गल्ला लिया है, चावल लिया है, उसके लिए सब मुशख्खस होना चाहिए, तीनों चीज़ें मुशख्खस और मुअय्यन होनी चाहिए। ये तीसरी, ये चौथी शर्त थी। अब एक शर्त और, पांचवी और आखिरी शर्त है जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, और वो ये है कि एहतियात वाजिब की बिना पर ज़मानत जो है वो अनडिपेंडेड होनी चाहिए, यानी मुस्तकिल होनी चाहिए, किसी चीज़ पर डिपेंड ना हो, किसी चीज़ पर निर्भर ना हो, यानी इंसान इस तरीके से ज़मानत ना ले कि अगर फ़लाँ इंसान ने, अगर फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ तारीख तक अपने कर्ज़ को अदा नहीं किया तो उस कर्ज़ को मैं अदा करूँगा, ये ज़मानत और ज़िम्मेदारी कबूल नहीं है। फ़ुकहा फरमाते हैं कि ऐसी ज़मानत को कबूल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसी से कर्ज़ वापस लेना चाहिए जिसको दिया है, जो इंसान ज़िम्मेदार बन रहा है उसको ज़िम्मेदार नहीं समझना चाहिए अगर किसी चीज़ पर निर्भर कर देता है या डिपेंड कर देता है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमने एक मिसाल दी, वो ये कैद लगा दे और शर्त लगा दे कि अगर इसने फ़ला तारीख तक अपने कर्ज़ को नहीं दिया, या और शर्त लगा दे कि अगर जो है ये इंसान फ़ला तारीख तक सफ़र से वापस नहीं आया तो इसका कर्ज़ मैं अदा करूँगा, या अगर फ़ला तारीख तक इसकी नौकरी नहीं लगी तो इसके कर्ज़ को मैं अदा करूँगा, इस तरीके की जितनी भी बातें हो सकती हैं जिनके ज़रिए से ज़मानत को और ज़िम्मेदारी को किसी चीज़ पर निर्भर किया जाए, तो अगर ऐसा कर रहा है तो उसकी ज़मानत को कबूल नहीं करना चाहिए और कर्ज़ उसी से लेना, वापस लेना चाहिए जिसको दिया है। ये पांच शर्तें थी जो हमने आपके सामने बयान की हैं। अब इसके बाद हम आपके सामने कुछ अहकाम बयान करेंगे ज़मानत के, जिनमें से सबसे पहला हुक्म ये है कि जिस इंसान ने कर्ज़ दिया है वो इंसान अगर चाहे तो अपने कर्ज़ को ज़ामिन पर माफ़ कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने दूसरे को कर्ज़ दिया और तीसरा उसका ज़ामिन बन गया कि इसको मैं अदा करूँगा, तो जिसने कर्ज़ दिया है वो चाहे तो उसको माफ़ कर सकता है, यानी कह सकता है कि ठीक है मुझे अपना कर्ज़ वापस नहीं चाहिए, देने की ज़रूरत नहीं है, यानी ज़ामिन को माफ़ कर सकता है। तो अगर ये माफ़ कर दे, ज़ामिन पर अगर माफ़ कर दे कि आप मेरे कर्ज़ को ना दीजिए, तो देखें यहाँ पर गौर करें, दिक्कत करें हमारे दोस्त और भाई और तमाम ही बुजुर्गान, कि कर्ज़ इसने दिया है, जैद ने कर्ज़ दिया है, खालिद ने कर्ज़ लिया है और मोहम्मद जो है वो ज़िम्मेदार बन गए हैं कि इस कर्ज़ को मैं अदा करूँगा, तो कर्ज़ लिया किसने है? कर्ज़ लिया खालिद ने, दिया जैद ने, जैद ने माफ़ कर दिया मोहम्मद पर कि आपको कर्ज़ देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तो जब जैद ने मोहम्मद पर माफ़ कर दिया है तो अब मोहम्मद को ये अधिकार नहीं है कि वो मौके का फ़ायदा उठाए और फ़ायदा उठाने के बाद आकर खालिद से कहे कि भाई वो कर्ज़ है जो आपने उससे लिया था अब वो मुझे दे दीजिए, चाहे उससे बताए कि मैंने माफ़ कर दिया, उसने माफ़ कर दिया है, या झूठ बोलने का तो इख्तियार है ही नहीं कि मैंने उसको अदा कर दिया है, लेकिन ये जो है मकरूज से कुछ चीज़ को कोई भी चीज़ नहीं ले सकता। दूसरा मसला ये है कि जो इंसान ज़िम्मेदार बन गया है, भाई या तो ज़िम्मेदार ना बने, लेकिन जब ज़िम्मेदार बन गया है तो फुकहा फरमाते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को ख़त्म नहीं कर सकता, अपनी ज़मानत को नहीं तोड़ सकता, बल्कि अब उस पर वाजिब है कि जिसके कर्ज़ की ज़िम्मेदारी ली है उसके कर्ज़ को अदा करे। तीसरा मसला दोस्तों ये है कि ज़ामिन और कर्ज़ देने वाला, यानी जिसने कर्ज़ की ज़िम्मेदारी ली है और जिसने कर्ज़ दिया है, अगर ये दोनों चाहें तो उसी वक्त जब ज़ामिन ज़िम्मेदारी ले रहा है और ये वादा कर रहा है कि इसके कर्ज़ को ये ख़ुद नहीं बल्कि मैं अदा करूँगा, उसी वक्त अगर ये दोनों के दोनों चाहें, यानी ज़ामिन और कर्ज़ देने वाला, तो उसी वक्त शर्त कर सकते हैं, शर्त लगा सकते हैं कि हम जब भी चाहें अपनी इस अहद और पैमान को तोड़ सकते हैं कि कर्ज़ मैं दूंगा, या इसी तरीके से बेचने कर्ज़ देने वाला भी ये शर्त लगा सकता है कि अगर मैं चाहूँ तो आपने जो अहद और पैमान किया है, जो वादा किया है, उसको ख़त्म कर दूँ और अपने कर्ज़ को उसी से वापस लूँ जिसको मैंने कर्ज़ दिया है। अगर ये ऐसी शर्त को पहले ही कर लेते हैं, यानी जब ज़मानत लेने वाला ज़मानत ले रहा है, तो ऐसी सूरत में जो है ये इस अहद और पैमान को तोड़ सकते हैं और उसकी ज़मानत ख़त्म की जा सकती है। दोस्तों, इस प्रोग्राम का चौथा और आखिरी मसला ये है कि अगर कोई इंसान जो है वो मकरूज़ की इजाज़त के बग़ैर उसके कर्ज़ का ज़ामिन बन जाता है, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने किसी दूसरे से 1,000 रुपये उधार लिए और एक तीसरा शख्स जो है वो जिसने उधार दिया है उसके पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि फलां शख्स जो जिसने आपसे उधार लिया है उसके कर्ज़ का ज़िम्मेदार मैं हूँ, उसके कर्ज़ को मैं आपको अदा करूँगा, और उसके बाद जो है वो उस कर्ज़ को अदा कर देता है, तो चूँकि इसने बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर मकरूज से बात किए हुए, जिसने उधार लिया था बग़ैर उससे बातचीत किए हुए, बग़ैर उसकी इजाज़त के ज़िम्मेदारी ली और उसके बाद कर्ज़ को अदा कर दिया, लिहाजा अब इस ज़ामिन को ये हक़ हासिल नहीं है कि ये उस मकरूज़ के पास आए और आने के बाद कहे कि भाई आपने जो फला से कर्ज़ अदा लिया था, मैंने उस कर्ज़ को अदा कर दिया है, लिहाजा अब आप उतनी रकम मुझे दे दीजिए। ये उससे मुतालबा नहीं कर सकता है, इसको अधिकार नहीं है कि ये उससे मांगे। लेकिन अगर इजाज़त के ज़रिए से ज़िम्मेदार बनता है, इजाज़त लेकर ज़ामिन बनता है, यानी जिसने उधार लिया है, जिसने कर्ज़ लिया है, या वो ख़ुद कहता है कि तुम ज़िम्मेदार बन जाओ, या ये उसकी इजाज़त से ज़िम्मेदार बनता है और फिर वो जो कर्ज़ है उसको अदा कर देता है, यानी ज़िम्मेदार बनता भी है और इसके कर्ज़ को अदा कर भी देता है, तो फिर ये इसको ये अधिकार है और ये हक़ हासिल है कि इसने जितना अदा किया है उसको इस मकरूज़ इंसान से ले सकता है जिसके कर्ज़ का ज़िम्मेदार बना था। दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर तमाम होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।